इशिका कियारा को CPR दे रही थी और कियारा को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समीर और उसकी माँ इशिका पर झपट पड़े थे। कियारा की सास तो इशिका के बाल तक खींचने लगी थी ताकि वो उसे बचा ना पाए। इस बीच राघव मित्तल वहां पर पहुंचा, जो कियारा का भाई था। राघव ने जब पूरे नज़ारे को देखा तो वो दंग रह गया, साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसकी बहन कियारा फर्श पर जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, तो उसकी सास और उसका पति उस लड़की पर हमला कर रहे थे जो उसे बचाने जा रही थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं लड़की, तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तभी तुम्हें अक्ल आएगी कि दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ाते हैं, कियारा की सास इशिका के बाल खींचते हुए बोली। कियारा की सास हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इशिका ने देखा कि कियारा के हाथ की उंगलियों में कुछ मूवमेंट हुई थी, इसका मतलब उसकी सांसें लौट आई थीं। कियारा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कियारा की सास अपने लंबे नाखूनों से उसका चेहरा बिगाड़ने की सोच रही थी। वो उस पर हमला करने जा ही रही थी कि इशिका ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। कियारा की सास आगे कुछ करती उससे पहले एक अनजान आदमी ने समीर की माँ की गर्दन पीछे की पकड़कर खींचा और उसे दूर धकेल दिया था। वो राघव मित्तल था, जो सर्द निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। आह, कौन हो तुम और तुमने मुझे इतनी बुरी तरह क्यों मारा? समीर की माँ रोते हुए चिल्लाई। इशिका भी हैरान थी कि अचानक कौन अनजान शख्स आकर उनकी मदद करने लगा। समीर ने जब अपनी माँ को इतनी बुरी तरह गिरते हुए देखा तो वो गुस्से से राघव पर चिल्लाकर बोला, कौन हो तुम जिसने मेरी माँ पर इतनी बुरी तरह हमला किया है? मेरी पत्नी के साथ तुम लोग इतना कर रहे थे वो काफी नहीं था क्या, जो मेरी माँ के साथ भी गलत करने लगे? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। समीर गुस्से में राघव की तरफ बढ़ने लगा, तभी राघव ने अपनी मार्शल आर्ट दिखाते हुए उसके पेट में जोरदार पंच मारा। समीर कुछ लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा था। राघव ने बॉडीगार्ड की तरफ देखा और सर्द आवाज में कहा, इन दोनों को पकड़कर रखो और पुलिस को बुलाओ। इनके खिलाफ मुझे कंप्लेंट करनी है कि पैसे के चलते इन्होंने मेरी बहन को मारने की कोशिश की है। राघव ने इतना ही कहा और फिर जल्दी से वो कियारा के पास गया। वो उसे उठाते हुए बोला, किया बेटा उठो, देखो मैं आ गया हूँ तुम्हें लेने के लिए, प्लीज आंखें खोलो। कियारा राघव से उम्र में छोटी थी तो वो उसे बच्चों की तरह प्यार करता था। इशिका समझ गई थी कि कियारा का भाई आ गया है। उसने राघव से शांत आवाज में कहा, इसकी सांसें लौट आई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये खतरे से बाहर है, इसे अभी सर्जरी की जरूरत है। थैंक यू सो मच मिस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपके इन एहसानों का बदला कैसे चुकाऊं, राघव ने नम आंखों से कहा और कियारा को अपनी गोद में उठा लिया था। यहाँ आते समय राघव ने रास्ते में ही कियारा की सर्जरी की तैयारी करवा ली थी। वो इशिका से बात करना चाहता था, पर फिलहाल कियारा की जान बचाना जरूरी था। वो कियारा को लेकर वहां से ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। उन्होंने समीर और उसकी माँ को अरेस्ट कर लिया था। आसपास के लोगों ने उनके खिलाफ गवाही दी तो केस और भी स्ट्रांग हो गया था। इन सब में सब इशिका की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वो इकलौती शख्स ऐसी थी जो सबके रोकने के बावजूद कियारा की जान बचाने में लगी थी। इशिका पुलिस को अपना बयान दे रही थी, तभी आयशा उसे तिरछी निगाहों से देख रही थी। वो मन ही मन बोली, इसने फिर से सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया। उसका भाई जो भी था, उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत अमीर आदमी है। मुझे पहले पता होता तो उस बेवकूफ लड़की के भाई को मैं ही कॉल कर लेती, ये लड़की हमेशा हीरोइन बन जाती है। आयशा को इशिका पर गुस्सा आ रहा था, साथ ही खुद पर भी। आयशा इशिका के पास गई और पूरे घमंड से बोली, मानना पड़ेगा इशिका, तुम कितनी शातिर हो। जब तुमने उसके भाई से बात की तब तुम्हें पता चल गया कि वो एक अमीर आदमी है, तभी तुमने उसका साथ दिया। पर अफसोस, उसने तुम्हें भाव तक नहीं दिया। तुमने उसकी बहन की जान बचाई पर उसने तुम्हें ठीक से थैंक यू भी नहीं कहा। अब समझ आ गया होगा तुम्हारी औकात क्या है। आयशा ने इशिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और राधिका के कमरे की तरफ जाने लगी। वहीं इशिका उसे गुस्से से देख रही थी। वो धीरे से बोली, मुझे नफरत है इस लड़की से, इसे हमेशा खुद का फायदा ही क्यों दिखाई देता है। मुझे कॉल पर कैसे पता चल सकता है कि उसका भाई अमीर था या गरीब? कहानी को तोड़ मोड़ कर पेश करना कोई इससे सीखे। राघव कियारा को सर्जरी के लिए ले गया था। वो इतना जल्दबाजी में था कि इशिका से ठीक से बात नहीं कर पाया था। इस बात को इशिका अच्छे से समझती थी। इशिका वहां से जाने को हुई तभी उसने अपने सिर पर हाथ रखा तो उसे भयंकर दर्द उठा। समीर की माँ ने उसके बालों को बुरी तरह से खींचा था कि अब तक उसे दर्द हो रहा था। मुझे थोड़ी देर आराम करना होगा, इशिका ने मन ही मन कहा और फिर अपने बालों को सही करने लगी, जो समीर की माँ ने बुरी तरह बिगाड़ दिए थे। उसने अभिमन्यु को एक मैसेज छोड़ा और वहां से वसुधा के पास जाने के बजाय अपने घर चली गई। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु ऊपर वसुधा के साथ था। अभी तक उसके दिमाग में वो गाड़ी वाला सीन घूम रहा था, जब अचानक इशिका उसके ऊपर आ पड़ी थी और अनजाने में ही सही उसने उसके कंधे पर किस किया था। वो सब सोचते हुए अभिमन्यु का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसका चेहरा लाल होने लगा था। उसने खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया और दरवाजे की तरफ देखा, इशिका अभी तक आई नहीं थी। अभिमन्यु मन ही मन बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे इस बात की शर्मिंदगी हो रही है कि उसने मुझे किस किया? इशिका के वहां न आने पर अभिमन्यु बेचैन हो रहा था। वो उसे कॉल करने जा रहा था तभी उसे इशिका का मैसेज मिला। इशिका ने लिखा था, मिस्टर राजवंश, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया है, मुझे घर जाना होगा, हम कल मिलते हैं। इशिका आज रात वहां नहीं आ रही थी। ये सोचकर अभिमन्यु ने राहत की सांस ली। वैसे भी उस मोमेंट के बाद वो इशिका से नजरें चुरा रहा था। अगले ही पल अभिमन्यु फिर से बेचैन हो गया। वो मन ही मन बोला, इतना भी क्या जरूरी काम था जो जाना पड़ा? रात को भी काम करती रहती है क्या? ये रूम कितना कंफर्टेबल है, यहां आकर अपना काम नहीं कर सकती थी क्या? अब अभिमन्यु को इशिका पर गुस्सा आने लगा क्योंकि वो वहां पर नहीं आई थी। वहीं दूसरी तरफ इशिका अपने घर पर पहुंची। जाते ही सबसे पहले उसने अपना हेयर वॉश किया और फिर अपने बालों में मसाज करने लगी। अजीब लालची औरत थी, अपनी ही बहू को मारने पर तुली थी। ऊपर से उसका बस चलता तो मेरे बालों को जड़ से उखाड़ देती। थैंक गॉड मिस्टर राजवंश वहां पर नहीं थे, वरना वो मुझे उन बिखरे हुए बालों में देखते तो पक्का मुझ पर बहुत हंसते। लेकिन वो तो हंसते ही नहीं है, एनी टाइम सीरियस बनकर रहते हैं। इशिका भी कहीं ना कहीं अभिमन्यु को मिस कर रही थी। इशिका ने कुछ देर मसाज की तो उसे बेहतर लगने लगा। फिर उसने लैपटॉप निकाला और अपना काम करके सो गई। अगली सुबह इशिका ऑफिस गई तो वो रोहन से टकरा गई थी। पिछले कई दिनों से वो सोया नहीं था तो उसके डार्क सर्कल हो गए थे, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि कल रात उसने अच्छी नींद ली थी। उसका चेहरा थोड़ा फ्रेश लग रहा था।
इशिका उसे इग्नोर करके ऊपर जाने वाली थी तभी रोहन उसके पास आकर बोला, पता है कल रात मैं अकेले घर गया था और तुम्हें अभिमन्यु ने ड्रॉप किया था। वो इंसान किसी से बात भी नहीं करता और उसने तुम्हें घर तक छोड़ा था। काफी अजीब बिहेव कर रहा था ना वो। अच्छा हुआ आज तुम उसके साथ ऑफिस नहीं आई, वरना मैं तुमसे बात नहीं कर पाता। वैसे तुम दोनों साथ में क्यों आते जाते हो? कुछ चल रहा है तुम दोनों के बीच? रोहन के सवाल जवाब फिर से शुरू हो गए थे। इशिका ने उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वैसे भी वो गलत कहा कह रहा था, आजकल इशिका अभिमन्यु के साथ ही आती जाती थी। वो दोनों साथ ऊपर जाने लगे। इशिका को चुप देखकर रोहन वापस बोला, अब मुझे समझ आया कि कल रात अभिमन्यु का मूड खराब क्यों था। तुम्हें पता है कल वो एक डील करने के लिए गया था, सब कुछ बिल्कुल फिक्स था, लेकिन फिर भी जिस इंसान के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था उसके साइन नहीं हो पाए थे क्योंकि उन दोनों में बनती नहीं है। कुछ तो नाम था उसका, रोहन कुछ सोचते हुए बोला। हाँ याद आया, उसका नाम राघव मित्तल था। राघव मित्तल और अभिमन्यु के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है, दोनों साथ काम करना नहीं चाहते होंगे पर करना पड़ रहा है, ये सोचकर ही दोनों काफी गुस्से में होंगे। बस तभी अभिमन्यु ने वैसा बिहेव किया। रोहन के मुंह से राघव मित्तल का नाम सुनकर इशिका चौंक गई। कल रात कियारा का भाई उसे मिलने आया था, उसका नाम भी राघव मित्तल ही था। इशिका मन ही मन बोली, ओ तो वो राघव मित्तल था। अभिमन्यु को वहां होना चाहिए था, अगर वो वहां होता तो राघव से मिल लेता और शायद दोनों के रिलेशन कुछ ठीक हो जाते। इस वजह से शायद कल अभिमन्यु गुस्से में होगा और तभी सच में अजीब बिहेव कर रहा था। इशिका ने आगे इस बारे में नहीं सोचा और रोहन के साथ काम करने के लिए चली गई। वहीं दूसरी तरफ कियारा की सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी। राघव के बाद में उसके माता पिता भी उसे मिलने के लिए आए थे। उन्हें देखकर कियारा बहुत रोई थी। राघव ने कियारा से पूछा, अच्छा कियारा बच्चे, वो लड़की कौन थी जिसने कल तुम्हारी हेल्प की थी? आज उसी की वजह से तुम जिंदा हो, तो मुझे उससे मिलना था, मैं उसे ठीक से थैंक यू तक नहीं कह पाया। भाई मुझे खुद उसका नाम याद नहीं है, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ, उसने मुझे नई जिंदगी और मेरी फैमिली दी है, कियारा ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। कोई बात नहीं, मैं उसे तुम्हारे लिए जरूर ढूंढ कर लाऊंगा, मुझे पता है तुम उससे मिलना चाहती होगी और मुझे भी मिलना है। तुम आराम करो, मैं आता हूँ, मुझे किसी काम से राजवंश एम्पायर जाना होगा, राघव ने प्यार से कहा और फिर बाहर आ गया। वो खुद इशिका को ढूंढना चाहता था, वो उनके लिए किसी मसीहा से कम नहीं थी। राघव इशिका के बारे में याद करने की कोशिश कर रहा था, उसे इशिका को कियारा की जान बचाने के बदले में थैंक यू कहना था। जब वो राजवंश एम्पायर पहुंचा तो अचानक उसकी नज़र लिफ्ट की तरफ गई, जहां इशिका खड़ी लिफ्ट के आने का इंतजार कर रही थी। उसे इशिका को पहचानने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि कल कियारा की सास ने इशिका के बालों को इतनी बुरी तरह बिगाड़ दिया था और वो ठीक से उसका चेहरा भी नहीं देख पाया था। ऐसे लग रहा है जैसे वो वही लड़की है, पास से देखूंगा तो पहचान जाऊंगा, राघव ने धीरे से कहा और अपने कदम इशिका की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही राघव इशिका के पास पहुंचा अचानक लिफ्ट बंद हो गई। रोहन और इशिका लिफ्ट के अंदर वहां से R&D डिपार्टमेंट जा चुके थे। राघव ने अफसोस भरे लहजे में कहा, इतने पास आकर भी दूर चली गई, खैर कोई बात नहीं, जब कल उसने कॉल किया था तो उसके नंबर मेरे पास आ गए थे, मीटिंग खत्म करने के बाद मैं उससे मिल ही लूंगा। इशिका ने एक बार भी राघव की तरफ नहीं देखा। वो रोहन के साथ R&D डिपार्टमेंट पहुंची। ऐसे ही वो लोग ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके टीममेट्स आपस में बातें कर रहे थे। रोहन और इशिका वहीं पर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। सानिया ने कहा, कल फ्राइडे है, हमारा काम अभी भी हुआ नहीं है, मिस्टर नक्श राजवंश तो हमारा जीना हराम कर देंगे जब उन्हें पता चला तो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है गाइस, कुछ सोचो टीना, उसके पास खड़ी लड़की टीना ने कहा। मुझे लगता है हमें हार मान लेनी चाहिए। ये बहुत मुश्किल है, ये किसी इंसान के बस का ही नहीं लग रहा। इसके लिए स्वयं भगवान को आकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। कल रात मैंने सर को कॉल किया था तो पता चला कि वो रात को काम करने के बजाय सो रहे थे। लगता है उन्होंने भी हार मान ली है, सानिया ने उतरे हुए चेहरे के साथ कहा। मिस सिंघानिया इस बार कुछ नहीं कर सकती क्या? मुझे लगा पिछली बार की तरह वो हमारी हेल्प कर देगी, एक लड़का नाखून चबाते हुए बोला। अपने टीममेट से इशिका की बुराई सुनकर लक्ष्य ने तुरंत कहा, तुम उस पर सारा प्रेशर क्यों डाल रहे हो? इशिका अभी नहीं है, ऊपर से उसकी उम्र भी बहुत कम है। वो कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन डॉक्टर मर्चेंट के बराबर नहीं हो सकती है। सबने लक्ष्य की बात पर सहमति जताई। बातें करते हुए जब उनकी नजर इशिका और रोहन पर गई तो तुरंत उन्होंने बातचीत का रुख बदल दिया था। सानिया उठी और मुस्कुराते हुए रोहन के पास आते हुए बोली, सर मैंने सुना था कल रात आप उस इवेंट में गए थे, वहां डॉक्टर मर्चेंट भी आए थे क्या? क्या आपकी उनसे कोई मुलाकात हुई? नहीं, वो नहीं आए थे, और वो इस तरह की पार्टी में नहीं जाते हैं। अगर जाते तो लोग उन्हें घेर कर बुरी तरह खड़े हो जाते हैं, उन्हें लाइमलाइट पसंद नहीं है, रोहन ने आइज रोल करके कहा। तो फिर मिस्टर दिशांक राठौर तो जरूर आए होंगे, क्या उनसे पता चला कि वो कौन सी रिसर्च कर रहे हैं? उनमें से किसी और ने पूछा। हाँ वो आए थे, लेकिन उनसे कुछ ठीक तरीके से बात नहीं हुई, रोहन ने जवाब दिया। फिर उसकी नजर इशिका पर पड़ी तो उसे कल रात दिशांक और इशिका का रिश्ता याद आ गया। वो उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए बोला, हाँ लेकिन आप लोग चाहें तो मिस सिंघानिया से पूछ सकते हो, उनका मिस्टर दिशांक राठौर के साथ खास रिश्ता है। हर कोई हैरानी से इशिका की तरफ देखने लगा। सानिया ने तुरंत पूछा, तुम दिशांक राठौर को जानती हो? इसका मतलब डॉक्टर मर्चेंट से भी मिली होगी ना तुम? सब उम्मीद भरी नजरों से इशिका की तरफ देखने लगे। उनमें से एक बोला, मिस सिंघानिया क्या आप हमें डॉक्टर मर्चेंट से मिलवाएंगी? इशिका ने उन सबके चेहरों की तरफ देखा जिन पर एक उम्मीद थी। वो नहीं जानते थे कि वही डॉक्टर मर्चेंट है, लेकिन सब उसकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे थे, ये देखकर उसे मन ही मन बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इशिका उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जरूर देखना एक दिन डॉक्टर मर्चेंट आप सबके साथ जरूर काम करेंगे, उन्हें भी खुशी होगी आपके साथ काम करके। इशिका के कहते ही सब एक साथ हंस पड़े, उन्हें ये किसी मजाक की तरह लग रहा था। सानिया ने कहा, मुझे तो इस तरह का सपना भी नहीं आता, क्योंकि सपने भी मैं अपनी औकात में देखती हूँ। सानिया के बाद टीना बोली, सही कह रही हो तुम, काम करना तो बहुत आगे की बात है, मैं एक बार उनसे मिल लूंगी, मेरे लिए वही काफी होगा। अरे उनका गाइडेंस मिल जाए यही हमारे लिए बड़ी बात है, बाकी अगर वो हमारे साथ काम करेंगे तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी, लक्ष्य ने जवाब दिया। वो सब आपस में काफी खुश होकर बातें कर रहे थे, जब तक कि रोहन ने उन्हें डांटना नहीं शुरू किया। वो उन पर चिल्ला कर बोला, अब क्या तुम लोग मेरे चिल्लाने पर ही काम करोगे? बहुत बातें हो गई हैं, पता है ना अभी तक कुछ नहीं हुआ है, हम इस तरह बिना कोशिश किए हार नहीं मान सकते हैं, चलो सब काम पर लगो। रोहन के कहने पर सब अपने अपने काम पर जाने लगे, उनमें इशिका भी थी। इशिका अपने लैपटॉप के साथ कुछ ही कदम आगे पहुंची थी कि रोहन उसके पीछे आकर बोला, तुम्हें खुद पर इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट काफी मुश्किल है और ये हमारे सीनियर्स जानते हैं, हम भले ही कामयाब ना हो पाए लेकिन हमारे सीनियर्स नक्श के सामने हमें डीमोटिवेट नहीं होने देंगे, चिंता मत करो सब हो जाएगा, इशिका ने मुस्कुराते हुए काफी कॉन्फिडेंटली कहा।
इशिका जब रोहन से बात कर रही थी तब नक्श उन्हें दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था। इशिका की मुस्कुराहट और कॉन्फिडेंस देखकर उसे कॉलेज के दिनों की याद आ गई। जब भी वो उसके साथ होती थी तब नक्श को कभी डीमोटिवेट फील नहीं हुआ, वो हमेशा उसकी मदद करती थी। उसकी जूनियर होने के बावजूद वो काफी इंटेलिजेंट थी। नक्श को कहीं ना कहीं बुरा लगने लगा था, इशिका जैसी नॉर्मल इंसान इतनी हाई लेवल की प्रॉब्लम सुलझाने में लगी हुई थी। इससे कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था और उसने तुरंत आयशा को कॉल किया। इस वक्त आयशा ही थी जो डॉक्टर मर्चेंट के जरिए उसकी प्रॉब्लम सुलझा सकती थी। लगता है आयशा का झूठ पकड़ा जाएगा, आखिर कब तक वो नक्श को बेवकूफ बनाएगी? वैसे देखा जाए तो वो है तो बेवकूफ ही जो इशिका जैसी लड़की को छोड़ दिया। खैर उसे जाने देते हैं, अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।